بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وعن ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الذنوب يغفر الله منها ما شاء الا عقوق الوالدين فانه يعجل لصاحبه في الحياه قبل الممات رواه البيهقي في شعب الايمان كذا في المشكات كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگان محترم اور پیارے بھائیوں، آج ہمارا معاشرہ گناہوں کے سیلاب میں بہتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے طرح طرح کی پریشانیاں، بیماریاں، الجھنیں، ڈپریشن، ٹینشن، گھٹن، یہ سب چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے، یہ ساری کائنات کا نظام اللہ کا ہے. اللہ کو ناراض کر کے اللہ کی زمین پر کوئی چین سے نہیں رہ سکتا. اس لیے میرے بھائیو، اگر چین چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، عافیت چاہتے ہو، تو ہر حال میں اللہ و رسول کی مان کر زندگی گزارنا شروع کر دو. بس عافیت کا یہی ایک راستہ. اس وقت ہمارے معاشرے میں جہاں بہت سارا گناہ پھیلتا جا رہا ہے، انہی میں ایک گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کو گالی دینا، والدین کو برا کہنا، والدین کے ساتھ گستاخی کرنا، والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ایسے ایسے واقعات آ رہے ہیں کہ ایک علاقے میں گیا تو ایک صاحب نے بتایا کہ ہمارے حادثہ ہو گیا. بولے کیا حادثہ ہوا؟ بولے باپ بیٹے میں کسی بات میں تو میں ہوئی، وہ بیٹا بے قابو ہو کر اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو اس نے مار ڈالا جان سے، باپ مر گیا، بیٹے کو اٹھا کے جیل میں لے کے چلے. یہاں تک کے واقعات معاشرے میں پھیل رہے ہیں. اس لیے آج کی اس مجلس میں والدین کا مقام کیا ہے، عظمت کیا ہے، ان کے حقوق کیا ہیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اسلام میں کتنی تاکید ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے، اور والدین کی نافرمانی، گستاخی اور بدتمیزی کا کتنا وبال ہے، پھر یہ والدین کے ساتھ جو اولاد بدتمیزی کر رہی ہے اس میں دخل کس کا ہے، یہ اولاد بدتمیز ہوئی کہاں پر، कौन सी जगह कैसे हुई, क्यों? हदीस में आता है कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा जो अल्लाह की तरफ से भेजा जाता है वो इस्लामी सोच लेके आता है, इस्लामी मिजाज लेके आता है, इस्लामी फितरत पर हर बच्चा पैदा होता है। फिर आखिर ये बच्चे बिगड़ते कहाँ है, कौन सी जगह पर, फिर वो बिगाड़ने के लिए उन्हें ले कौन जाता है, उसका जिम्मेदार कौन, ये भी गौर कीजिएगा, फिर आखिर में बताएंगे। अभी मैंने आयत पढ़ी है वक़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्या वबिल वालिदैन एहसाना, आपके रब ने यह फैसला फरमा दिया है कि अल्लाह ही की इबादत करो, और आपके रब ने यह भी हुक्म दिया है कि वालदैन के साथ अच्छा सलूक किया जाए। अगली आयत में है कि वालदैन में से कोई एक अगर आपके पास बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें किसी बात के जवाब में उफ भी न कहो, उन्हें झिड़को भी नहीं, उनके साथ नरमी से बात करो, उनके सामने झुक कर रहो, आजिज बनकर रहो, रहमत और मोहब्बत के साथ रहो, ये पूरी आयात का खुलासा है। फिर मैंने जो हदीस पढ़ी है उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे कुल्लु ज़ुनूब यग़फिरुल्लाहु मिन्हा माशा। देखो जब बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह का दो निजाम है, एक निजाम यह है कि जैसे ही बंदे ने गुनाह किया उसी वक्त फौरन अजाब भेज दिया, फौरन पकड़ आ गई, एक निजाम ये है। जैसे वो नजरान का वाकया किताबों में लिखा हुआ है और इब्ने कसीर के हवाले से मनकूल है कि जामा नजरान की जामा मस्जिद में एक नौजवान बैठा था, बहुत हाइट भी उसकी अच्छी थी और गोरा चट्टा खूबसूरत और बहुत ही तंदुरुस्त तवाना फरबा। एक शख्स ने उसको देख के कह दिया कि भाई तू तो बहुत अच्छा लगता है, तेरी हाइट भी अच्छी है, गोरा भी है, खूबसूरत भी है, और तुझे देखकर मुझे बड़ी हैरत हो रही है। तो इसको इस जुमले पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए था कि बेशक ये जवानी भी अल्लाह की दी हुई है, सेहत भी अल्लाह की दी हुई है, ये रंग रोगन भी सब अल्लाह का दिया हुआ, उसको क्या करना चाहिए, अल्लाह की अगर अल्लाह की नेमतों को बाकी रखना चाहे तो उस पर शुक्र करना चाहिए। मगर आजकल बहुत से लोग शुक्र के बजाय तकब्बुर करते हैं, घमंड करते हैं, अकड़ने लगते हैं और समझते हैं कि ये कमाल हमारा है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिन अल्लाह, तुम्हें जो भी नेमत हासिल है ये ख्याल करो, ये अकीदा करो, ये इस्तेहजार करो कि जो भी नेमत हासिल है वो सब किसकी तरफ से, बोलो खुदा की तरफ से। और ये भी सोचा करो कि रिमोट कंट्रोल भी अपने हाथ में ले रखा है, जब चाहे छीन ले। इसलिए गाफिल मत होना, तकब्बुर मत करना, घमंड मत करना, इतराना नहीं। तो नौजवान को अपनी जवानी की नेमत पर, सेहत की नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था, उसने शुक्र के बजाय तकब्बुर का जुमला बोल दिया। आपको हैरत होगी, कभी गुनाहों पर ऐसी ऐसी पकड़ आती है जैसे आपने ट्यूब लाइट का बटन दबाया और लाइट आई। कहा उस आदमी ने कहा भाई आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं और मैं आपको देख के हैरत के समंदर में डूब रहा हूं, बड़े अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, हाइट भी अच्छी है और रंग भी अच्छा है, आंखें भी बड़ी बड़ी, गाल भी गोरे गोरे। तो उसको कहना चाहिए था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मगर उस जवान ने अल्लाह का शुक्र करने के बजाय कहा तुमको क्या मेरे ऊपर ताज्जुब होता है, मैं तो ऐसा हूं कि मेरे ऊपर अल्लाह को भी ताज्जुब हो रहा है। नऊज़ बिल्ला, उस नालायक ने अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी का और बदतमीजी का जुमला बोल दिया। तारीख उठाकर पढ़ो, साहब तफसीर इब्ने कसीर ने इस वाकये को लिखा है कि जैसे ही उसकी जुबान से यह जुमला निकला है खुदा की फौरी पकड़ आ गई। लोगों ने खुली आंखों देखा कि वो नौजवान जिसकी हाइट इतनी अच्छी थी, हट्टा कट्टा था, अचानक वो घटना शुरू हो गया, छोटा होना, छोटा छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, लोग देख रहे हैं, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, इतना छोटा हो गया कि थोड़ी देर में उसका एक रिश्तेदार आया और यूं अपनी आस्तीन में डालकर उसे लेके चला गया। खुली आंखों देख लिया खुदा की ऐसी पकड़ आती। अदल व इंसाफ फकत हश्र पे मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती। ये समझाने के लिए वाकया बता दिया कि जब बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह का दो निजाम है, कभी तो गुनाह पर फौरी पकड़ करते और कभी अल्लाह ताला ढील दे देते, किसी को मरने तक देते हैं, लेकिन वालदेन की नाफरमानी और वालदेन को सताने का गुना ऐसा है कि इस पर अल्लाह ढील नहीं देते। ये मैंने जो हदीस पढ़ी है इस हदीस में ही बताया जा रहा है, कुल्लु जुनूब यग़फिरुल्लाहु मिन्हा माशा। और एक रिवायत में युअख्खिरुल्लाह, युअख्खिर कहते हैं इसको बाद में कर देना, मुअख्खर कर देना, ढील दे देना, कि अल्लाह जिस गुनाह को चाहते हैं पकड़ कर लेते हैं और जिस गुनाह को चाहते हैं उस पर ढील दे देते हैं। इल्ला उकूकुल वालिदैन, हां लेकिन वालदेन की नाफरमानी, उनके साथ गुस्ताखी, बदतमीजी और उनको सताने वाला गुना ऐसा है। हदीस कह रहे फइन्नहु जो अज्जिलु लिसाहिबिही फिल हयात क़ब्ल अल ममात, ये वालदेन की नाफरमानी और उनको सताने का गुना ऐसा है कि मरने से पहले पहले दुनिया ही में उस पर अल्लाह का अज़ाब आकर रहता। इसलिए मेरे भाइयों, जिनके वालदेन जिंदा हैं उन्हें चाहिए कि वालदेन की कदर कर ले। अब आओ बताऊं, वालदेन की कदर करना, उनकी खिदमत करना, अच्छा सुलूक करना, उनको मोहब्बत भरी एक नजर देखना, इस पर अल्लाह को कितना प्यार आता है और कितने बड़े बड़े इनामात का वादा। बुखारी की रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं सअलतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल आमाल अहब्बु इलल्लाह, कहते मैंने अल्लाह के रसूल से यह सवाल किया कि यह बताइए अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब, सबसे प्यारा, सबसे अच्छा अमल क्या है। यह उन्होंने सवाल किया हुजूर, उसके जवाब में हुजूर ने फरमाया अस्सलातु लिवक्तिहा, अपने वक्त पर नमाज को पढ़ना, यह अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब अमल है। कुल तो सुम्मा अय्युन, मैंने कहा फिर उसके बाद फरमाया सुम्मा बिर्रुल वालिदैन, फिर वालदेन के साथ अच्छा सुलूक करना, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, ये अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब और प्यारा अमल है। आप गौर कीजिए, इस हदीस में अल्लाह ताला ने अपनी इबादत और बंदगी के बाद सबसे पहले जिस चीज को महबूब अमल बताया वो क्या बताया बोलो, वालदेन के साथ अच्छा सुलूक करना। अब आओ तस्वीर का दूसरा रुख देखो, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, अरे मैं तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा जो गुनाह है उसके बारे में बता दूं। तीन मरतबा हुजूर ने जुमला इरशाद फरमाया अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, बड़े बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा जो गुनाह है उसके बारे में बता दूं। कुलना या रसूल अल्लाह, साहबा कहते हैं हमने कहा जरूर अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाइए। तो हुजूर ने सब गुनाहों में बड़ा, सबसे पहला जो बड़ा गुनाह बताया क्या फरमाया अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना, पहला बड़ा गुनाह। फिर उसके बाद फरमाया व उकूकुल वालिदैन, फिर बड़ा गुनाह क्या है, वालिदैन की नाफरमानी। उधर देखो उस रिवायत में अपनी इबादत और बंदगी के बाद सबसे महबूब अमल क्या बताया था, वालदेन के साथ अच्छा सलूक करना। इस हदीस में सबसे, सब गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह सबसे पहले शिर्क, उसके बाद फिर वालदेन की नाफरमानी। कुरान पाक में तकरीबन 14 मकामात पर वालदेन के हुकूक का तस्कर आया और अक्सर जगह इस अंदाज से अल्लाह ने बयान फरमाया कि पहले अपनी इबादत का, अपनी बंदगी का, अपनी रुबूबियत का, अपनी तौहीद का जिक्र फरमाया, उसके बाद फिर वालदेन के साथ अच्छे सलूक। क्या बात निकली, हुकूकुल्लाह में अल्लाह ने सबसे पहले तौहीद इलाही को बयान फरमाया और हुकूकुल इबाद में सबसे पहले वालदेन के हुकूक को बयान। बुखारी की रिवायत है, एक सहाबी हाजिर खिदमत होते हैं, कहते हैं मन हक्कुन्नास बिहुस्नि सहाबती, या रसूलल्लाह मेरे अच्छे सुलूक का, मेरी खिदमत का, मेरी तवज्जो का सबसे ज्यादा मुस्तहिक लोगों में कौन है, सबसे ज्यादा किसके साथ अच्छे अखलाक से पेश आऊं, सबसे ज्यादा किसकी खिदमत करूं, कौन मुस्तहिक है। फरमाया उम्मक, तुम्हारी मां।
या रसूलुल्लाह सुम्मा मन फिर का उम्मक तुम्हारी माँ, सुम्मा मन फिर कौन का तुम्हारी माँ, सुम्मा मन सुम्मा अबू फिर फरमाया तुम्हारा बाप। एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए हैं और अल्लाह के रास्ते में गजवा में जाने की जिहाद में जाने की इजाजत मांग रहे हैं, वो भी हुजूर के साथ। देखो गजवा और जिहाद बहुत ऊंचा बहुत मुबारक अमल है, और हुजूर के साथ जिसको गजवे का मौका मिल जाए तो क्या कहना। तो हुजूर के साथ वो गजवा करने का वो मशविरा कर रहे हैं, इजाजत मांग रहे हैं। हुजूर ने फरमाया अहयुन वालिदाक, तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? उनका नाम हाँ मेरे माँ बाप जिंदा। फरमाया फफी हिमा फजाहिद, जाओ उनकी खिदमत करके तुम जिहाद का सवाब हासिल करो। आप सोचिए गजवे का जिहाद का कितना ऊंचा मकाम। मगर इस हदीस में वालदेन की खिदमत को तरजीह दी जा रही है गजवे पर। पता चला कि बाज हालात में वालदेन की खिदमत का मकाम और मर्तबा अल्लाह के रास्ते में गजवे से भी बढ़कर। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब कोई नेक लड़का अपने माँ बाप को मोहब्बत भरी सिर्फ एक नज़र से देखता है, कोई नेक लड़का अपने माँ बाप को मोहब्बत भरी सिर्फ एक नज़र डालता है, उस एक नज़र पर अल्लाह को इतना प्यार आता है, अल्लाह इतना खुश होते हैं कि उस एक नज़र के देखने पर एक हज का सवाब अता फरमाते। सहाबा को हैरत हुई, कहने लगे या रसूलल्लाह फिर तो हम लोग बहुत ज्यादा बार बार नजर करके सौ सौ हज का सवाब ले सकते हैं। तो हुजूर ने फरमाया हाँ अल्लाह भी उससे ज्यादा सवाब अता फरमा सकते, यानी अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। अगर कोई दस मरतबा देखेगा तो दस हज का सवाब मिलेगा, सौ मरतबा देखेगा तो सौ हज का सवाब मिलेगा। इसलिए मेरे भाइयों अगर किसी के माँ बाप इस वक्त दुनिया में जिंदा हैं तो दिलो जान से उनकी कदर कर लो। खाली आप बैठ के मोहब्बत भरी नजर उन पर डालते रहोगे तो हर हर नजर पर आपको एक एक हज का सवाब मिलेगा। देखो एक आदमी की बीवी होती है, उसका इंतकाल हो गया दूसरी कर लेगा, दूसरी इंतकाल कर गई तीसरी कर लेगा, इस तरह से एक आदमी की दसियों बीवियां हो सकती हैं, लेकिन मां बाप किसी के बोलो दो हो सकते हैं, मां बाप तो एक ही हो सकते। इसलिए अगर किसी को मां बाप मिले हैं तो दिलो जान से उनकी कदर कर लो। अगर कुछ गुस्ताखी बदतमीजी हो गई है अभी उनसे माफी मांग लो, उनका दिल खुश कर लो। अगर खुदा न खास्ता नाराजगी की हालत में किसी के माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, अब उसके लिए शक्ल यह है कि वो अपने माँ बाप के लिए बार बार मगफरत की दुआ करे, उनका कोई कर्जा है तो वो अदा करे, उनकी तरफ से इसाल सवाब करे, और उनके दोस्तों के साथ भी अच्छा सलूक करे। उन्होंने किसी से कोई अहद और वादा किया था वो उसको पूरा कर दे। ये सब आमाल अगर वो जिंदगी भर करता रहेगा तो उम्मीद है कि कयामत के दिन वो फरमाबरदार बेटों में शुमार हो जाए। अब देखो वक्त कम है, मुझे बहुत सारी बातें इमाम साहब बहुत अपोजिट मजमून मुझे दे देते हैं। कभी ये कहते हैं कि वालदेन के हुकूक पर भी बयान करो और साहब सफर के बारे में बयान करो। अब बोलो मैं सफर के बारे में सुनाऊं, अभी वालदेन का मजमून ही इतना लंबा है। अब सुनो मैंने जो हदीस शुरू की थी कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वालदेन की नाफरमानी ये ऐसा गुना है कि इसकी सजा मरने से पहले दुनिया ही में अल्लाह ताला दे देते। इस पर आपको दुनिया में पेश आया हुआ एक वाकया सुनाने जा रहा हूं, कलेजा थाम कर सुनो। ऐसा दहला देने वाला वाकया है कि रोंगटे खड़े हो जाओ। मगर मेरे भाइयों इन बातों को सुनकर सिर्फ लज्जत न लो बल्कि अमल का इरादा करो। लिहाजा जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो जल्दी से उनकी कदर कर ले, उनकी खिदमत करे, उनकी दुआएं ले। हदीस में आता कि तीन लोगों की दुआ तो रद्द होती नहीं यानी कबूल होती, उसी में एक माँ बाप की दुआ औलाद के। अगर किसी के माँ बाप औलाद के लिए हाथ उठा दे तो ये अल्लाह के रसूल ने वादा फरमाया वो दुआ कबूल हो। लिहाजा माँ बाप को भी चाहिए कि औलाद के लिए बददुआ ना करें, दुआ ही करें, आखिर दम तक उनकी हिदायत के लिए इस्लाह के लिए दुआ करते रहे, अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या उम्मत के लिए बददुआएं की? غیروں نے جنہوں نے حضور کا خون بہایا, حضور کے جان کے دشمن تھے, ان کے لیے بھی حضور نے ہدایت کی دعا دی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماں باپ بنایا ہے, آپ کی دعا کو قیمتی بنایا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اولاد کو بد دعا دیتے پھر. اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور یہ ماں باپ کو بہت زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب آج ہمارا مقام بیان کیا جا رہا ہے اور اولاد کو انسلٹ کیا. نہیں نہیں, کسی کی اولاد کو انسلٹ کرنا مقصود نہیں ہے, سب کے حقوق ہیں. یہ اکثر اولادیں جو نافرمان ہوتی ہیں, سرکش ہوتی ہیں, اگر آپ غور کریں گے تو اس میں زیادہ تر ماں باپ کی کوتاہی و غفلت کے نتیجے میں اولاد نافرمان ہو جاتی. کیونکہ اولاد کو نیک بنانے کے لیے شریعت نے بڑی دور سے تعلیم دی ہے, کہا جب نکاح کرنا ہو تو اسی وقت انتخاب کرو کیسی عورت کا جو نیک ہو اور دیندار ہو. آج بہت سے لوگ بس عورت کا ظاہری چمڑا اور آنکھ بڑی بڑی دیکھ کے ٹوٹ پڑتے ہیں, آگے اس کا کیریکٹر کیسا, کردار کیسا, وہ دیندار ہے پڑھی لکھی, اسے کچھ دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی. بس اس کا چمڑا گورا دیکھا, آنکھ بڑی بڑی دیکھی, بس نہیں میرے کو منگتا ہی ہے, میرے کو منگتا ہی, ٹوٹ پڑے. اور اس کے بعد پتا چلا وہ تو آوارہ ہے, گانا سنتی ہے, ہر دم موبائل میں ڈوبی رہتی ہے, اسے اللہ کا ڈر نہیں, خوف نہیں, اس کی زبان پر اللہ کا ذکر نہیں. اولاد نیک کیسے بنے گی بولو؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے دنیا میں دین کا ڈنکا بجا دیا, پتا ہے وہ کیسی ماں کے گود میں انہوں نے پرورش پائی تھی؟ ان کی ماں جو تھی ان کا نام تھا بی صفیہ, وہ پورے قرآن پاک کی حافظہ تھی. روزانہ ایک منزل تلاوت کا معمول تھا اور روزانہ 5000 درود شریف پڑھنے کا معمول تھا. روزانہ 5000 مرتبہ اللہ اللہ کا ورد کا اور اس کے علاوہ بہت سارے اذکار لکھے. پھر اس کے علاوہ گھر میں ہر دم بچیوں کو قرآن پڑھاتی تھی. کچھ بچیاں دائیں ہیں بائیں ہیں, کوئی قرآن یاد کر رہی ہے, کوئی بہشتی زیور سیکھ رہی ہے, بس اپنے گھر میں چلتا پھرتا ان کا مدرسہ قائم رہتا ہے. ایسی ماں کے گود میں جو بچہ پرورش پائے گا وہ نیک نہیں بنے گا. اس لیے شریعت نے اولاد کو نیک بنانے کے لیے کہا نیک عورت کا انتخاب کرو, پھر جب بچہ پیدا ہو جائے تو پہلے ہی اس کے کان میں اذان دو, اقامت کہو, جیسے ہی وہ بولنا شروع کرے تو کلمہ سکھاؤ, پھر اس کے بعد جب وہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم کرو, 10 برس کا ہو جائے نہ پڑھے تو مارو. اور آگے ایک لفظ اور حدیث میں, وہ لوگ جانتے ہی نہیں عمل کیا کرے, فرمایا فرقوا بینہما فی المساجد, جب بچہ 10 برس کا ہو جائے تو اتنی نگرانی کرو کہ رات کو وہ سوئے تو 2 بچے ایک چادر میں لپٹ کر نہ سوئیں, الگ الگ سوئیں, اخلاق اور عادتیں خراب نہ ہونے پائیں. اتنی دور تک شریعت نے ناکہ بندی کی, اور ہم شروع میں شادی ہوتی ہے بس جوانی کے نشے میں لاڈ میں رہتے ہیں, اولاد کچھ بھی برا کام کر رہی ہے صاحب ہمیں کوئی پرواہ نہیں. جب برا کام کرتے کرتے ان کی عادت پکی ہو جاتی ہے, گناہ کی لت پڑ جاتی ہے, اب ان کی آنکھ کھلتی, حضرت وہ اولاد میرے ساتھ تم طلاق کر رہی ہے, بدتمیزی کر رہی ہے. آپ کے آندھرا میں ایک جگہ میں گیا تھا, ایک صاحب اپنے بچے کو لے کے آئے, کہا حضرت یہ بہت شرارت کرتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے کرتا ہو. نہیں نہیں بہت ستاتا ہے, بہت شرارت کرتا ہے. وہ میری زبان سے نکل آیا کہ ایسا لگتا ہے کہ ٹی وی دیکھ دیکھ کے پیدا ہوا ہے. بس وہ بےچارے چپ ہو گئے. اچھا پہلے تو ٹی وی دیکھ دیکھ کے پیدا ہو, اب موبائل دیکھ دیکھ کے پیدا ہوتے ہیں, تو آگے اولاد کیسی ہو؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہرحال وہ واقعہ تو میں سنا دے رہا ہوں, لیکن اس واقعے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اولاد کی تحقیر کریں, یا اگر کسی کی بیوی ہے تو بیوی پر ظلم کریں. اگر کسی نے بلی کے بچے کے ساتھ ظلم کیا, جانور کے ساتھ ظلم کیا, تو اس کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ ہو گیا. تو اگر کوئی کسی انسان پر ظلم کرے, پھر مسلمان ہو, حضور کی امت ہو, اور آپ کی بیوی ہو, اس پر آپ ظلم کریں گے تو کیا حال ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ, ظلم والوں کی طرف اگر تمہارا جھکا اور میلان بھی ہو گیا تو جہنم کی آگ کی دھمکی. اب جو واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں بڑا دردناک ہے, مگر اس واقعے کو سن کر بہت سے لوگوں کو جوش آئے گا, وہ ماں کے ساتھ تو خوب خدمت کریں گے اور بیوی کے ساتھ ظلم کرنے لگیں. یہ بھی غلط ہے. ماں باپ کا بھی حق ادا کرو اور بیوی کا بھی حق ادا کرو. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاستوصوا بالنساء خیرا, حضور نے فرمایا عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی میں وصیت کر رہا ہوں, ان کی اس وصیت کو قبول کرو. ایک حدیث میں فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باهلی, کا کامل ایمان والے وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ مہربان ہیں, بیوی بچوں کے حق میں بہت شفیق ہے, مہربان ہے. لہذا بیوی پر بھی ظلم کرنا جائز نہیں, اور جب بیوی پر ظلم کرنا جائز نہیں تو ماں باپ کے ساتھ کوئی ظلم کرے گا تو وہ تو میں نے آپ کو حدیث بتائی کہ مرنے سے پہلے ہی خدا کی پکڑ آ جائے گی. اب وہ واقعہ جلدی سے سن لو ورنہ رہ جائے گا, وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے. آخر میں سفر کے بارے میں بھی کچھ کہنا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, انہوں نے بڑے عجیب عجیب واقعات جمع کیے ہیں. وہ کہتے ہیں میں جس وارڈ میں افیسر تھا تو مجھے سب تلاش رہتی تھی کہ ہمارا بھائی مسلمان مر رہا ہے تو دیکھیں اس کا آخری وقت کیا ہے, آخری حال کیا ہے. ایک نوجوان کا واقعہ, بڑا دردناک واقعہ وہ نقل کر رہے ہیں, اور وہ ایسا واقعہ ہے کہتے ہیں کہ 40 سال کے پریکٹس کے عرصے میں اتنا دردناک واقعہ اور ایسی دردناک موت میں نے کسی کی نہیں دیکھی. کہتے ہیں میرے وارڈ میں ایک نوجوان تھا, اس کے گردے فیل ہو گئے تھے. گردے فیل ہونے کی بیماری میں وہ ایڈمٹ کیا گیا. انتقال سے 3 دن پہلے اس پر جو نزہ کی سختی طاری ہوئی بڑی عجیب و غریب تھی. کہتے ہیں اس کا عجیب حال تھا, اس کی آنکھیں باہر کو نکل پڑتی, چہرہ پورا نیلا پڑ جاتا, اور وہ ایسی ڈراؤنی آواز نکالتا تھا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو اور وہ چیخ رہا ہو, چلا رہا ہو. کہہ رہے ہیں یہ آواز تو آتی تھی لیکن آخری 2 دن میں اتنی آواز اس کی ایسی بڑھ گئی کہ وارڈ کے دوسرے مریض گھبرا کر بھاگنے لگے. مجبوراً اس کے لیے اس وارڈ سے الگ دور ایک کمرے کا انتظام کرنا پڑا. کہتے ہیں آخری 3 دن کی نزہ کی جو سختی اس پر رہی وہ ایسی حالت تھی کہ آنکھیں باہر کو نکل آتی, باڈی نیلی پڑ جاتی, اور وہ ایسی دردناک آواز نکالتا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا, اور یہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی بڑھتی جا رہی تھی. آخر کار اس کا باپ میرے پاس آیا. وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا باپ میرے پاس آیا اور کہنے لگا ڈاکٹر صاحب اب یہ تکلیف دیکھی نہیں جا رہی, آپ اس کو زہر کا انجیکشن لگا دو. یہ باپ آ کے ڈاکٹر صاحب سے درخواست کرا. ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیا بات ہے, اس نے کچھ ستایا ہے, تکلیف پہنچائی ہے کیا, آپ باپ ہو کے ایسی بات کر رہے ہیں کہ میں زہر کا انجیکشن لگا دوں. اب باپ کا جواب سنو اور کلیجہ تھام کر سنو. باپ نے کہا یہ وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنی ماں کو مارا کرتا تھا, یہ بری موت اس کا نتیجہ ہے اور اس کا انجام. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس سے بھی دردناک واقعہ ہے جو میں آپ کو سنا سکتا ہوں مگر وقت نہیں ہے, اب نہیں سناؤں گا. بس اب میں مضمون کو سمیٹ رہا ہوں. دوسرا مضمون سب کا خلاصہ ہے میرے بھائیوں کہ جس کے بھی ماں باپ زندہ ہوں انہیں چاہیے کہ ان کی خدمت کرے, قدر کرے. اور ماں باپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہو, ہمارے مرنے کے بعد ہماری بخشش کا ہاتھ اٹھانے والا بنے, تو ان کو چاہیے شروع سے بچے کو دینی ماحول دیں. ابھی میں نے ماں باپ کی خدمت کی جو حدیثیں سنائی کہ صاحب ایک نظر دیکھنے پر ایک حج کا ثواب ملتا ہے, یہ حدیث بچے کے کان میں کبھی آپ نے ڈالی, یا آپ کسی ایسی مجلس میں یا کسی ایسے مدرسے میں آپ نے داخل کیا کہ جہاں پر جانے کے بعد اس بچے کے کان میں ماں کا درجہ کیا ہے, باپ کا مقام کیا, اسے معلوم پڑتا؟ شروع میں ماں باپ کوتاہی کرتے ہیں, ایسے ماحول میں بچے کو نہیں بھیجتے جس سے ماں کا درجہ کیا ہے, باپ کا مقام کیا ہے, ماں کی خدمت کرنے پر کیا کیا اجر و ثواب اسے معلوم ہی نہیں ہوتا. اور جب گناہ کرتے کرتے اب عادت پختہ ہو گئی, معاملہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا, اب انہیں اپنے حقوق یاد آتے ہیں کہ صاحب یہ تو میں باپ ہوں, میرا حق ادا نہیں کرتا. زیادہ تر ایسا ہو رہا ہے کہ آج اولاد جو ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شروع میں ماں باپ کے ذمے اولاد کے جو حقوق تھے انہوں نے ادا نہیں کیا, اس کی وجہ سے آج یہ منحوس دن ان کو دیکھنا پڑ رہا ہے کہ بڑھاپے میں اولاد نافرمان ہو رہی. جا کے یورپ کا حال دیکھو, جگہ جگہ اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں. ماں باپ جب اصل خدمت کے محتاج ہوتے ہیں, جس دن کے لیے اولاد کو پالا تھا پوسا تھا, कि हम बुढ़े हो जाएंगे तो हमें संभालेंगे, हमारी खिदमत करेंगे। अब वो दिन आने से पहले माँ बाप को उठा के ओल्ड हाउस में भेज देते हैं, वो बेचारा वहीं खांसता है, वहीं पेशाब करता है, पखाना करता है, और जब मर जाता है तो बिल आ जाता है, वादा कर देता बस। हालांकि इसी दिन के लिए माँ बाप ने पाला था कि हम कल को जब बुढ़े हो जाएंगे तो ये औलाद हमारी खिदमत करे। इसलिए मेरे भाइयों, औलाद को अगर नेक बनाना है तो शुरू से नेक औरत से शादी करो, नेक औरत का इंतखाब करो, और उसके बाद शुरू से बीवी को बच्चों को नेक माहौल दो और बुरे माहौल से बचाओ। अच्छी सोहबत ये सारी भलाइयों का सरचश्मा है और बुरी सोहबत ये सारी बुराइयों की जड़। जब सोहबत बुरी हो गई और उसके नतीजे में औलाद को बुरी लत पड़ गई, अब हम रोते फिर रहे, तावीज मांगते फिर रहे। इसलिए मेरे भाइयों, अब भी अगर किसी की औलाद नाफरमान है, हाथ से निकल गई है, अभी भी उसका रास्ता मौजूद है। अब क्या रास्ता है? अब आप औलाद के साथ सख्ती न कीजिए, आप उनकी हिदायत और इस्लाह के लिए दुआ करते रहिए, एक काम। दूसरे, जब औलाद बड़ी हो जाए, अब उनकी इस्लाह का दो रास्ता है, या तो अल्लाह वालों की सोहबत में किसी तरह उन्हें पहुंचाओ, और नहीं तो जमात भेजो। ये जमात भी एक तरह से नेक सोहबत का इंतजाम करती, मस्जिद में जाती है, किताबी हलके में बिठाती है, नमाज पढ़ाती है, तो ये नेक माहौल की बरकत से आहिस्ता आहिस्ता दिल नरम होता है, फिर उसकी आंख खुल जाती है, फिर वो अपने माँ बाप का एहतराम करने वाला बन जाता है। इसलिए हुकूक सबके हैं, माँ के भी हैं और बाप के भी हैं, औलाद के भी हैं और बीवी के भी हैं, सबके हुकूक मालूम करो, और हर एक को चाहिए कि हमारे जिम्मे दूसरे का जो हक है हम अदा करेंगे। हमारा वो अदा नहीं करता, उसके लिए हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह इसको तौफीक दीजिए कि हमारा हक अदा करें, उसकी वजह से हम उससे लड़ाई नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करें, हमारे जिम्मे जो हक है हम अदा करें। बस ये वालदैन का मजमून यहीं पर स्टॉप करता हूं, अभी इस पर सुनाऊं तो काफी मजामीन है। अगला सफर का महीना है, सफर के बारे में मैं इतने सारे सफहात सब जीरोक्स करा के जगह जगह से फतावे जमा करके सब लाया था और सब आपको सुनाने का इरादा था, लेकिन वक्त भी नहीं है। सबका खुलासा मैं बता देता हूं कि सफर के महीने को बहुत से लोग मनहूस समझते हैं, ये अकीदा गलत है। ना कोई महीना मनहूस है, ना कोई दिन मनहूस है, ना कोई घड़ी मनहूस है। असल नहूसत गुनाहों के अंदर है, हमारे बुरे आमाल में है। जिस दिन आप गुनाह करेंगे, जहां करेंगे, वो जगह आपके लिए मनहूस हो जाएगी, वो दिन आपके लिए मनहूस हो जाएगा। मसलन आज आपने हराम काम किया, इस हराम काम की वजह से आपके लिए आज जहन्नम का फैसला हो गया, तो आज का दिन भी आपके लिए मनहूस हो गया, क्योंकि आपके लिए तो जहन्नम का फैसला हो रहा। इसलिए मेरे भाइयों, सफर के बारे में यकीदा रखना। बहुत से लोग कहते तेरा तेजी मतलब सफर के इब्तदाई 13 दिन को, ये ख्याल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीमारी थी वो सफर के इब्तदाई 13 दिनों में बहुत तेज हो गई थी, लिहाजा ये दिन मनहूस है, ये भी गलत है। उन्होंने जो तहकीक की वो तहकीक ही गलत है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीमारी का आगाज हुआ था वो सफर के इब्तदाई 13 दिनों में नहीं हुआ था, बल्कि सफर के आखिरी दिनों में बीमारी का आगाज हुआ और रबीउल अव्वल में जाके आप वफात पा गए। तो ये अकीदा रखना कि साहब वो 13 तेजी इसलिए कहते हैं कि हुजूर की बीमारी ने तेजी पकड़ ली और वो सफर के इब्तदाई 13 दिन थे, ये भी गलत है। ऐसी बहुत सारी अजीब अजीब खुराफात इसके बारे में लोगों के जहन में है। एक जुमला है कि ला सफरा, क्या मतलब? सफर मनहूस नहीं है। सफर के बारे में नहूसत का अकीदा रखना यह गलत है। बहुत से लोग इसकी वजह से इस महीने में शादी नहीं करते, निकाह नहीं करते, यह भी गलत है। जमाने जाहिलियत में शव्वाल के महीने को वो लोग मनहूस समझते थे, शादी नहीं करते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का निकाह भी शव्वाल में हुआ और रुखसती भी शव्वाल के महीने में। फिर हजरत फरमाती थी, बताओ शव्वाल का महीना मनहूस होता तो मुझसे ज्यादा बताओ, मेरा निकाह भी शव्वाल के महीने में हुआ, रुखसती भी हुई, और बताओ हुजूर की बीवियों मुझसे ज्यादा खुश नसीब कौन है? इमाम उल अंबिया उनके निकाह में आए, अल्लाह के रसूल ने कितना मानते थे, उनसे कितना दीन फैला। इसलिए सफर के बारे में जितने ख्यालात हैं सब फालतू हैं। खाली इतना है कि सफर एक महीना है और उसमें नहूसत का अकीदा रखना यह गलत है। असल नहूसत हमारे गुनाहों के अंदर, पूरी तहकीकात का खुलासा है जो मैंने एक जुमले में पेश कर दिया। अभी हमारे एक भाई कह रहे थे कान में कि आज साहब घर से निकलते हैं तो घर से बाहर के निकलने की दुआ नहीं पढ़ते, और वजू शुरू करते हैं तो वजू की शुरू में दुआ नहीं पढ़ते, घर से निकलते वक्त भी हेलो होलो करते निकलते हैं और वजू में शुरू में दुआ नहीं पढ़ते हेलो होलो। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे मुआशरे में आज फैल रही है। मैं कौन कौन सी बातों का बयान करूं मेरे भाइयों, सबकी बुनियाद मैंने बताया था कसरत जिक्रुल्लाह और सोहबत अहलुल्लाह इख्तियार कर लो, इसकी बरकत से हमारी बहुत सी बुरी आदतें छूट जाएं। घर से बाहर निकलने की आप दुआ पढ़ लें बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हदीस में कि शैतान आपके रास्ते से हटा दिया जाएगा, स्पेशल अल्लाह की हिफाजत की जाए। वजू के शुरू में आप पढ़ लें बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, पढ़िए बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। हदीस में है अगर किसी ने वजू के शुरू में पढ़ लिया तो जब तक उसका वजू बाकी रहेगा फरिश्ते कंटिन्यू नेकियां लिखते ही रहेंगे, लिखते रहेंगे। कितनी बड़ी दौलत है, मगर वही हमें मोबाइल की लत पड़ी है, जेब में मोबाइल रख के आते हैं मस्जिद में भी, और जैसे ही हम वजू शुरू करते हैं किसी दोस्त ने घंटी बजा दी, अब बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कहाँ याद आता, करते करते वजू शुरू कर देते हैं, शुरू में बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़। मैं आपको ऐसी दुआ बता सकता हूं कि घर में दाखिल होते वक्त अगर आपने पढ़ लिया तो आप अल्लाह की जमानत में आ जाए, अल्लाह की सेफ्टी में आ जाए, मगर वहां भी ये परेशानी। हदीस में है कि अगर कोई आदमी घर में दाखिल हुआ और अस्सलामु अलैकुम करके दाखिल हुआ वो अल्लाह की जमानत में आ जाए, वहां भी वही परेशानी। जब घर में दाखिल होने के वक्त ऐन मौका आता है उसी वक्त या तो कोई घंटी बजा देता है और या हम भूल जाते हैं और अस्सलामु अलैकुम करके दाखिल नहीं होते, अल्लाह की सेफ्टी और जमानत हमें मिल नहीं पाती। तो ये मोबाइल जो है ये इस जमाने में इसने बहुत सारी नेकियों से हमें महरूम कर दिया, इसने कुरान से दूर किया, नमाज से दूर किया, अल्लाह से दूर किया, रसूल से दूर किया। रसूल से दूर करना कहते हो, ऐसा काम ये करवाता है कि रसूल के दरबार में हाजिर होने के बाद भी खतरा यह है कि कहीं अल्लाह के रसूल की तरफ से एताब हो जाए और हुजूर नाराज हो जाए खफा। हमने अपनी आंखों से देखा है रौज़े अतहर के सामने जब लोग जाते थे तो वहां पर सब तरफ से ख्यालात को हटा के हुजूर की तरफ तवज्जो रखते थे और आंखें झुकाकर सलात व सलाम पेश करते थे। अब वहां जाते हुजूर के दरबार में पहुंच गए, वहां भी उन्हें ख्याल नहीं कि हो सकता हुजूर हमारी तरफ मुतवज्जे हो, लाओ हम सब ख्यालात से अपने को पाक करके हुजूर की तरफ मुतवज्जे होकर सलात व सलाम पेश करें। वहां हुजूर के सामने खड़े होकर भी यूं कर रहे, यूं कर रहे, यूं कर रहे, वहां भी सबसे बातें कर रहे, इस पर खतरा यह है कहीं हुजूर की तरफ से एताब हो जाए। इसलिए ये लानत जब से आम हुई है मोबाइल की, इसकी वजह से क्या क्या गुनाह आम हुए एक लंबी लिस्ट है, कभी सुनाऊंगा, लेकिन सबका खुलासा है अगर इस गुनाह से भी आप बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस गुनाह को झटकने की ताकत और कुव्वत पैदा हो जाए, तो उसका वही दो हल है कसरत जिक्रुल्लाह और सोहबत अहलुल्लाह। ये दो काम कर लेंगे तो बड़े से बड़े गुनाह को छोड़ने की ताकत कुव्वत और हिम्मत पैदा हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अपनी मर्जियात पे चलना आसान फरमाए, ना मर्जियात से हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए।